नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। सवाल है कि क्या भारत बिहड़ बन गया है? तो उसका जवाब है हाँ। और ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, मौजूदा व्यवस्था और हालात इसे बयां करने के लिए काफी है। जरा सोचिए, NCR यानी देश के राजधानी क्षेत्र में किसी शख्स की घुट घुट कर मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है कि उसकी गाड़ी अंडरपास में पानी भरने से डूब जाती है। यही नहीं, डिजिटल क्रांति की आड़ में साइबर लुटेरों को लोगों को लूटने की छूट मिली हुई है। उस पर कोई नियंत्रण तंत्र है ही नहीं, और हो भी क्यों। आखिर बिहड़ की व्यवस्था लूट खसोट और आतंकित करने के सिद्धांत पर ही तो चलती है, तो फिर उसमें कैसा नियंत्रण, कैसी जिम्मेवारी। इसीलिए अपन तो कहेंगे कॉलम में इस बार मेरे विचार का शीर्षक है बिहड़ में बारिश। शुद्ध नहीं इसीलिए ओझल है, अन्यथा मौजूदा भारत बिहड़ है। तभी भारत का हर दिन बिहड़ कथा का दिन है, और कथा दिन में एक नहीं बल्कि असंख्य। भारत की जमीन, भारत के भूगोल, भारत की आबोहवा, मनुष्यों की दैनंदिनी में कुछ भी अब समतल नहीं है। सब कुछ उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा और लूट खसोट से है। स्वाभाविक, जो मनुष्य जिंदगी का हर पहलू सचमुच तकलीफ देह है। किसी भी पहलू में सोचें, लोगों की जिंदगी बेबस, बेकाम, बदहाल और लाचार है। गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है और अंधविश्वास है। वही कुप्रथाएं हैं, भूख है, भय है और राम भरोसे की भक्ति है। और सबसे बड़ा त्रासद सत्य है, बेबस जिंदगी रोए तो किसके आगे रोए। यदि आप इंसान हैं तो कल्पना करें उस बैंक मैनेजर और कैशियर की, जिनके प्राण पखेरु शुक्रवार की रात पुराने फरीदाबाद रेलवे अंडरब्रिज के नीचे बरसाती पानी में फड़फड़ा कर खत्म हुए। इन दोनों ने, इनके परिवार वालों ने या हम सब बिहड़वासियों में क्या यह ख्याल कभी हुआ होगा कि ऐसे भी सड़क पर घुट घुट कर मरा जाता है? मेरे ख्याल से ऐसे जानवर भी नहीं मरता। मेरा साक्षात अनुभव है कि नदी में पानी बढ़ता या बहाव तेज होता है तो पशु स्वस्फूर्त बाहर निकल किनारों में दूर जा छुपते हैं। तो दोषी कौन, मैनेजर और कैशियर खुद या बिहड़ की व्यवस्था? फरीदाबाद बिहड़ का राजधानी क्षेत्र है, और वर्ष 2024 के बारिश सीजन में दिल्ली के राजधानी क्षेत्र में क्या हुआ है, इसके ढेरों और इतनी तरह के इतने अनुभव हैं कि अपने अजीत द्विवेदी ने उनका ब्यौरा देते हुए लिखा था कि दिल्ली एक जीता जागता नर्क है। पर नर्क और बिहड़ का फर्क होता है, नर्क का एक व्यवस्था विशेष से संचालन है। नर्क उन्हीं के लिए होता है जो पापी हैं और नर्क भोगने के कुकर्म लिए होते हैं। लेकिन भारत के लोग, बिहड़ के लोग, चंबल के लोग तो सरल, भोले और सीधे साधे हैं। ये भला नर्क भोगी क्यों हो? ये तो उस बिहड़ के भोगी हैं जो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए व्यवस्था की भूख और अहंकार का एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र से निर्मित है। याद है दिल्ली के राजेंद्र नगर में इमारत की बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से 3 नौजवानों के मरने की घटना? उस घटना का कौन जिम्मेवार ठहरा? ऐसे ही कार में बैठे SDFC बैंक के मैनेजर और कैशियर की कार में पानी भरने से हुई मौत के लिए तंत्र क्या कभी अपने को जिम्मेवार मान सकता है? कतई नहीं। इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी से लेकर वार्ड का पार्षद, बीट कांस्टेबल, पटवारी या बाबू बिहड़ के लोगों के प्रति अपने को जवाबदेह समझे या संभव ही नहीं है। प्रधानमंत्री से पार्षद की बिहड़ संरचना के पारिस्थितिकी तंत्र की यही प्रमुख विशेषता है कि यह मालिक सबका है लेकिन जिम्मेवार किसी के प्रति नहीं। इसीलिए क्योंकि इन्हें हाथी की, शेर की, सत्ता की सवारी करनी आती है, मगर उसे साधना, उस पर चाबुक चलाना, उसे अनुशासित और जिम्मेवार रखने का न ABC मालूम है, न जरूरत मानते हैं और न हिम्मत है। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि बिहड़ के डाकू और बागी आम जनता में मसीहा माने जाते हैं, लेकिन उनका मूल सरोकार तो लाठी और व्यवस्था के मनमाने उपयोग का है। अल्टीमेटली तो वे पावर की भूख, उसकी कृपा, उसके उपयोग, उसकी भागीदारी से 24 घंटे उसे एंजॉय करते हैं, उसमें मगन रहते हैं। बिहड़ में कोई जिम्मेवार नहीं होता, उसकी व्यवस्था आतंक, खौफ और लूट है, वह नियति में चलता है। इसलिए बिहड़ में लोग मरे तो मरे, कौन काउंटिंग करने वाला है, उस पर सोचना ही क्यों। फरीदाबाद की खबर पर एक रिपोर्टर ने लिखा है, यहां के लोगों का कहना है कि बरसात में आए दिन यहां पर ऐसे हादसे होते रहते हैं और शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। वहीं इस घटना पर पुलिस का कहना है कि लोग मना करने पर भी नहीं मानते हैं। बैरिकेड लगा दिए गए थे, फिर भी लोग गाड़ी ले जाते रहे। बैंकरों की मौत के बाद भी प्रशासन बेसुध है। अंडरपास में अब भी पानी भरा हुआ है। निगम के गेट पर ताला लगा हुआ है। पुलिस कह रही है कि कोई FIR नहीं की है। इसमें निगम की कोई गलती नहीं है। बैंकरों को मना किया गया था कि न जाएं, लेकिन वो गए। कैशियर विराज गुड़गांव का था, इसलिए उसे पता नहीं था कि ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरब्रिज के नीचे इतना पानी होगा जो गाड़ी पानी के अंदर डूब जाए। इसलिए जैसे ही गाड़ी में पानी भरा, विराज ने गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी के कारण गाड़ी ही बंद हो गई, लॉक लग गया। दोनों अंदर ही छटपटाते रहे। तो दोषी कौन? मरने वाले? इसलिए क्योंकि पहली बात, वे बिहड़ में रात को घूम क्यों रहे थे? फिर ये क्यों माना कि महानगर के अंडरपास में इतना पानी भरा नहीं हो सकता? ड्राइवर ने रोड के किनारे की सड़क पर लिखे इस नोटिस को क्यों नहीं पढ़ा कि सावधान, अगर पानी इस लाल रेखा तक पहुंच गया हो तो इस पुल का उपयोग न करें? और सबसे बड़ी बात, स्यापा ही क्यों करना? बिहड़ में रह रहे हैं तो जिंदगी और मौत पर क्या सोचना? भारत के बिहड़ में प्रतिदिन असंख्य लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं, बिजली कड़कने से मरते हैं, आंधी से मरते हैं, पानी में डूबने से मरते हैं और सांप काटने से मरते हैं, लावारिस चिकित्सा से मरते हैं, खराब मिलावटी चीजें खाकर मरते हैं, आत्महत्या से मरते हैं और हाँ, पता है, धमकियों से भी मरते हैं। ये धमकियां कहां से आती हैं? बिहड़ में स्थित अलग अलग उप बिहड़ों से। पता है 140 करोड़ लोगों के बिहड़ के भीतर इन दिनों कितने बिहड़ हैं? असंख्य। कोई कहता है मेवात से फोन आते हैं, किसी के अनुसार जामताड़ा क्षेत्र से, लेकिन मैंने जितनी बातें सुनी है उससे लगता है कि पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस, कंपूचिया आदि पूरी दुनिया के लिए ही भारत अब एक बिहड़ है जो स्मार्टफोन से लूटने का आदर्श भूभाग है। मजे से एक झटके में लोगों को उल्लू बनाकर वसूली की जा सकती है, उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, घर परिवारों में कलह, समाज में बदनामी कराई जा सकती है। सचमुच अकल्पनीय किस्से और अनुभव हैं और इन पर निश्चित ही सीरीज लिखी जा सकती है। साइबर अपराध की इस अनहोनी आपदा और विपदा के आगे बिहड़ के लोग वैसे ही बेबस लाचार हैं जैसे चंबल के अनुभव में डाकुओं की फिरौती वसूली लूट के समय होते थे। सोच सकते हैं मैं पूर्वाग्रह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर ठीकरा फोड़ रहा हूं, लेकिन ईमानदारी से दिल पर हाथ रख अपने और अपने आसपास के अनुभवों पर गौर करें और सोचें कि पिछले 10 वर्षों में कितने नए किस्म के लुटेरे बिहड़ के भोले भाले लोगों को लूटने का महाअभियान चलाए हुए हैं। फोन सब तरफ हो रहे हैं, दिल्ली से हो रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों और पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस जैसे देशों से हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं। और बिहड़ को ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है, लेकिन भारत सरकार, प्रदेश सरकार और देश भर के पुलिस, कोतवाल, पूरा तंत्र कुछ नहीं कर सकता। सबका एक जवाब है, हम कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। यह है डिजिटल क्रांति का सत्य। एक आंकड़े के अनुसार बिहार में इस समय 66 करोड़ स्मार्टफोन हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 95% फोनधारी प्रतिनिधि 3-4 स्पैम, झूठी फ्रॉड कॉल रिसीव करते हैं। उन्हें हर दिन कोई 12 फ्रॉड मैसेज मिलते हैं। और कौन है इस सबका सिरमौर गैंग लीडर? भारत सरकार। इसलिए क्योंकि बिहार के नागरिकों का 10 तरह से आधार कार्ड, किसान कार्ड से लेकर डिजी यात्रा आदि के ढेरों बहानों से डाटा एकत्र कर भारत सरकार ने साइबर डाकुओं के लिए बिहार में लूट का काम बहुत आसान कर दिया है। चंबल के बिहार में डाकू मान सिंह, मलखान सिंह या फुलन को इलाके के पैसों वालों या लूट सकने की संभावना वाले परिवारों का ब्यौरा मालूम करने के लिए मेहनत करनी होती थी, लेकिन भारत सरकार ने 140 करोड़ लोगों के आंकड़े, फोटो, हैसियत, सबके डाटा एकत्र करके देश दुनिया के साइबर डाकुओं के कंप्यूटरों में सबका अता पता, फोन नंबर, इतिहास और पोल खोली हुई है। और जब ऐसा है तो वे क्यों ना उस डाटा का उपयोग करके फेक आईडी, नकली दस्तावेज, नकली आवाज, फेक फोटो, वीडियो आदि सबके जरिए बिहार के लोगों को उल्लू बनाने, ठगने का काम करें। पर इस पर भी क्या रोना, वह वक्त गया जब चंबल में भी सुरक्षा थी, छोटे आम लोग तब झूठ लूट से बचे रहते थे, शाम रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे, दिन दोपहरी में भी सावधानी रखते थे, लेकिन मोदी शाह की डिजिटल क्रांति के विकसित बिहार में इस तरह की सावधानियों की भी गुंजाइश नहीं है। अब गरीब को भी लोन और पैसे का झांसा देकर ठगा जा रहा है तो शेष भारत के लोग सीबीआई के डिप्टी एसपी, ईडी अफसर, एसपी, कोतवाल, बैंक मैनेजर आदि उन तमाम नामों की कॉल से धमकाए जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, जिनकी कुछ भी हैसियत है। सोचे इस स्वर्णिम काल पर पैसे वालों, खाते पीते लोगों को लूटने के बिहार के आला नए नेता, नौकरशाह सिस्टम पर और ऊंचे लोगों के साथ ही बिहार में नीचे के लोगों के घर घर पहुंच रहे फोनों, फरमानों, झांसों, झूठ लूट की पारिस्थितिकी की जमीनी सच्चाई पर। क्या बिहार में कहीं भी व्यक्ति की जान और माल, नागरिक की अस्मिता, गरिमा, सुरक्षा का क्या कोई मतलब है? पॉडकास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड का करें इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद।